ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
லிங் தேக்கியே, இது சம்பவ ஹை கி ஹம் கஹீன் பஹார் ஜாயே, 15-20 தின் கே லியே சலே ஜாயே, तो जैसे ही फिर पुनः वापस लौट के आते हैं, तो जैसे ही ताला खोला और अंदर घुसे तो आलमारी खुली हुई पड़ी है। अंदर जो सामान था वो सब इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। आप घबरा करके कहते हैं कि अरे मेरे घर में चोर आ गया और मेरा सामान ले गया है। अब वहां पर चोर खड़ा है क्या? नहीं, वो तो हफ्ते पहले ही वो सब उठा करके ले गया। लेकिन उन्होंने चोर के द्वारा जो किया गया, जो वो सामान जो रफा धफा कर दिया है, वो कार्य वो दिखा रहा है कि चोर आ गया। वो जो टूटा कबाट है, अलमारी है, वो इस बात को साबित कर देती है कि यहां पर चोर आ चुका है। यदि उनको ढूंढना है तो क्या करेंगे? उसके पद चिन्हों को देखा जाएगा। ये कार्य वो चोर की सिद्धि तो कर देता कि चोर जरूर आया है, चोर बिना चोर आए ये आलमारी टूट नहीं सकती है, सामान जो है रफा दफा और गुम नहीं हो सकता। हम किंतु वो चोर कैसा है वो देखना चाहे तो उसके पद चिन्हों को देखिए। पद चिन्ह से ये पता चल जाएगा कि ये स्त्री है या पुरुष है, वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष के दोनों के पद चिन्ह में बहुत फर्क होता है। और ठीक है, यदि पुरुष है इस बात का पता चल जाए तो वो छोटी उम्र का है या बड़ी उम्र का है, इस बात का भी पद चिन्ह से पता चल जाता है। अब यदि ढूंढना है तो क्या करेंगे? उनके पद चिन्ह के ऊपर आप चलेंगे तो वो जहां पहुंचा है वो मिल जाएगा। लेकिन कई बार संभव ऐसा है कि वो पद चिन्ह को मिटा भी दे। किंतु जैसे आजकल जो है विज्ञान का विकास हुआ है, फॉरेंसिक लैब, तो वहां पर जो पदार्थ या हैंडल के ऊपर, जैसे उन्होंने हैंडल तो तोड़ा ही होगा, तो उसके ऊपर कुछ निशान छूट जाते हैं, तो निशान के माध्यम से फॉरेंसिक लैब के अंदर उनका रिसर्च करने पर उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। तो वो पहुंचने का जैसे माध्यम है, वैसे ही जो ओंकार है वो परमात्मा के तक पहुंचने का क्या है? माध्यम है। उनके द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उपलब्धि उसके द्वारा हो जाती है, पद चिन्हों के द्वारा उपलब्धि हो जाती है। जैसे भागवत में जो कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा, स्यमंतक मणि निमित्तक, तो भगवान ने उस कलंक को मिटा दिया था। सत्राजिति नाम का एक यादव था, उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की थी और उपासना से उन्होंने सूर्य से एक मणि पाया था, वो स्यमंतक मणि। अब हुआ क्या कि वो मणि को वो सर में बांध करके वो घूमता रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ये मणि को सर में बांध करके घूम रहे हो ने, वो तुम्हारे लिए अनिष्ट का कारण हो सकता है, वो तुम उसको छुपा करके रखो, किसी को दिखाओ मत। जो महंगी चीज है वो चारों ओर सबको दिखाते हुए निकलना नहीं चाहिए। जैसे आजकल हो रहा है कि आप सुवर्ण की चैन पहन करके निकलेंगे तो क्या होगा? वो खींच करके चले जाने वाले बहुत घूम रहे हैं। तो भगवान ने तो उनको ठीक सलाह दी, लेकिन उनको लगा कि देखा ये भगवान के पास सुवर्ण की कोई कमी नहीं है, सुवर्ण की द्वारिका के वो मालिक है, तो मेरे पास एक मणि है वो भी उसके मन में खटकती है, कहते वो भी उसे देखी नहीं जा रही है। अब उतने में एक दो दिन में हुआ ऐसा कि उनका लड़का वो मणि को सर में बांध करके वो घूमने के लिए चला गया, तो वो लड़का वापस ही नहीं आया। बहुत ही खोज की लेकिन वो वापस नहीं आया, तो वो सत्राजित ने वो कहने लगा कि निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की नजर जो है वो मेरे मणि के ऊपर पड़ी थी, इसलिए मणि को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मेरे पुत्र को मरवा दिया है वो मणि के लिए। तो धीरे धीरे वो बात जो है भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच गई। होता ऐसा है यदि हम किसी के बारे में कुछ कहे और फिर जिसको कहते उनको हम साथ साथ में ये भी कहते हैं कि तुम इस बात को कहना मत किसी को, यदि ऐसा ही होता तो तुम उनको ही क्यों कहते? यदि वो अकथित ही अकथ्य है, कहने योग्य नहीं है, तो उनको ही नहीं कहना चाहिए? कहने के बाद फिर हम कहते हैं कि तुम उसको कहना नहीं, तो होता यह है कि धीरे धीरे वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाती है। भगवान श्री कृष्ण तक वो बात पहुंच गई, भगवान श्री कृष्ण को लगा कि उन्होंने तो मेरे को कलंक लगा दिया, अब वो कलंक धोना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं यादवों को तैयार किया कि चलो तुम लोग मेरे साथ साक्षी के रूप में देखो, हम मणि को ढूंढ लाते हैं। तो तैयार हो गए सब। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले वो बच्चों के साथ जो खेल रहा था वो लड़का, उन बच्चों को इकट्ठा किया कि अच्छा तुम बताओ तुम किस दिशा में खेलने के लिए गए थे? तो कहा कि इस दिशा में गए थे। भगवान श्री कृष्ण उस दिशा में सबको लेकर के गए, तो वहां देखते हैं काफी दूर जाकर के तो वो लड़का है ना वहां मरा हुआ पड़ा। अब वो देखा कि ये तो यहां मरा हुआ पड़ा है और मणि नहीं है, मणि कहां गया होगा? तो भगवान ने वहां देखा कि घमासान युद्ध हुआ है, कुछ लड़के ने भी काफी छूटने का प्रयत्न किया है, देखा पद चिन्ह तो शेर के पद चिन्ह पाए गए, निश्चित हुआ कि शेर ने इस बच्चे को लड़के को मार दिया गया है और वो शेर मणि लेकर के भाग गया। अब शेर को कहां ढूंढे? तो उनके पद चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़े भगवान, वो काफी दूर तक गए तो देखा कि शेर भी वहां मरा हुआ पड़ा। भगवान ने देखा कि शेर भी यहां मरा पड़ा हुआ है और मणि नहीं है। अब किसने शेर को मार दिया होगा? तो जो है पास में देखा कि शेर का किसी के साथ घमासान युद्ध हुआ है और वहां पद चिन्ह को देखे तो पाया गया कि भालू के ये पद चिन्ह है। अब किसी प्राणी के है समझ लो। तो वो पद चिन्ह को देखते हुए वो भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते गए तो वो पद चिन्ह जो है एक अंधेरी गुफा की ओर जा रहे थे। भगवान ने सबको कहा कि इस गुफा के अंदर वो है, वो वहां जाना पड़ेगा। तो ये साथ वाले सब कहने लगे कि नहीं, हम ये अंधेरी गुफा में नहीं आएंगे, आपको कलंक लगा है, आप जाइए अंदर। भगवान ने कहा ठीक है तुम लोग यहां बाहर खड़े रहो, मैं अभी अंदर जाता हूं। भगवान अंदर गए, काफी दूर गए अंधेरी गुफे में, तो वहां गए तो थोड़ा सा एक जगह प्रकाश दिखा। जैसे वो नजदीक गए तो एक लड़की वो मणि के साथ खेल रही है। भगवान अभी जाकर के वहां खड़े रहे, कुछ बोले, उससे पहले अंदर से कोई वो प्राणी आ गया और सीधा भगवान के ऊपर अटैक कर दिया और बड़ा घमासान युद्ध हुआ भगवान के साथ। वो भालू थे तो उन्होंने देखा कि ये मनुष्य है, मेरे से परास्त क्यों नहीं हो रहे। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो और कोई नहीं, मेरे इष्ट देव भगवान राम ही है। राम ही तो कृष्ण रूप में है। तो फिर जो है उन्होंने क्षमा याचना की और प्रायश्चित के तौर पर कहा कि आप ये मणि भी ले जाइए और साथ साथ में ये जो मेरी बेटी है वो भी मैं आपको देता हूं। जामवंती भगवान की पटरानी है कि नहीं? जामवंती। वो भालू कौन है? वो जामवान, जो रामायण में भगवान राम का जो कार्य किया था वो। तो ये कहानी के द्वारा जो है बात ये स्थापित होती है कि पद चिन्ह के द्वारा यदि आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे वो मणि को पाया गया, वैसे ये आत्मा रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए जैसे आप एक एक जो कोश है उस कोश को आप उसके अंदर अनित्य बुद्धि और शरीर अनात्म बुद्धि करते हुए चले जाएंगे तो वो अंत में जाकर के वो आत्मा तक पहुंच जाएंगे, ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। इसलिए ओंकार है ना, वो ब्रह्म का कोश है। इसलिए ब्रह्मण कोशोसी, ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान है, ब्रह्म की उपलब्धि के लिए वो आलंबन है। इसलिए कहा गया कि हे ओंकार आप ही ब्रह्म का कोश है। इसलिए हम शब्दात्मक जो है वर्ण का समूह अकार उकार मकार से हम प्रार्थना नहीं कर रहे, किंतु ये ओंकार जिसकी उपलब्धि का स्थान है उस परमात्मा से प्रार्थना हुई, जड़ ओंकार से नहीं, अचेतन ओंकार से प्रार्थना नहीं हुई। किंतु अचेतन जो प्रणव है उसका जो वाच्य और लक्ष्य परमात्मा है वो उनकी प्रार्थना हुई। हम शालिग्राम की पूजा करते हैं तो क्या पत्थर मानकर के पूजा करते हैं? नहीं, ये शालिग्राम विष्णु है, विष्णु मानकर के पूजा करते हैं तो फल देने वाले कौन है? पत्थर फल देंगे क्या? वो शालिग्राम भगवान फल देंगे, ठीक है कि नहीं? ऐसी यदि हम ओंकार से प्रार्थना करते हैं तो ओंकार है वो अचेतन है तो वो फल नहीं देंगे, किंतु ओंकार से अभिलक्षित उपलक्षित जो परमात्मा है वो हमको फल देने वाले है। फल देने वाले कौन है? परमात्मा है। इसलिए आखिर में परमात्मा से प्रार्थना हुई। दूसरी बात इसमें कही गई, देखो मेधया पिहित, ये ओंकार कैसा है? मेधया पिहित है। देखे अभी जैसे बात हुई कि ओंकार के लिए कहा गया कि आप ब्रह्मण कोशो से, आप कोश है, ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान है, तो फिर सब लोग जो है ओंकार की उपासना क्यों नहीं करते? ओंकार के माध्यम से परमात्मा दर्शन क्यों नहीं कर लेते? यदि श्रेष्ठ है तो जो श्रेष्ठ है उनका तो अनुकरण करना चाहिए, वही जो है आश्रय लेना चाहिए। तो कहा कि सब लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कहा मेधया पिहित, हे ओंकार आप मेधा से पिहित है। मेधा से अभिप्राय लौकिक प्रज्ञा, आप लौकिक प्रज्ञा से आच्छादित है। लौकिक प्रज्ञा से अभिप्राय सामान्य लोक है, उनके द्वारा आप आच्छादित है। सामान्य जन व्यक्तियों को इस बात का पता नहीं है कि ओंकार की उपासना से परमात्मा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इस बात की प्रसिद्धि नहीं होने से सब लोग ओंकार की उपासना नहीं करते हैं। अब लोग देखो किसकी उपासना करते हैं? लोग जो है धर्म परलोक और इन उपासनाओं के लिए वो खुद जो है प्रमाण का विचार नहीं करते, सब लोग ज्यादातर अधिकतर लोग क्या करते हैं वो देखते हैं। और आप लोग ये देखते हैं धर्म के बारे में तो खास ये है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं, अधिकतर लोग जो है किसकी उपासना करते हैं, तो फिर वो और लोग भी जो उनके पीछे पीछे वो चले जाते हैं, प्रमाण का विचार नहीं करते, इसलिए फिर वो फल को नहीं पाते हैं। इसलिए जिसका शास्त्र में उल्लेख ही नहीं है ऐसी मनगढ़ंत मनुष्य बुद्धि परिकल्पित उपासनाएं करते हैं, इस प्रकार की उपासना का और कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। और फिर दोष भगवान को देते हैं, सिस्टम को देते हैं कि ये तो ऐसा ही है सब फालतू, तो इसमें कुछ होता नहीं है, कहते ऐसा लोग कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम उपासना का जो माध्यम है वो सही चुनते हैं, लेकिन हम जो है ढंग से करते नहीं है, जैसा विधान बताया गया है उसी प्रक्रिया से हम यदि नहीं करते तब भी हम फल को नहीं पाते हैं, और दोष जो है हम उस माध्यम को देते हैं, कर्म और उपासना को देते हैं कि ये तो व्यर्थ है, इससे मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये लौकिक प्रज्ञा से आच्छादित है, आम जनमानस के लिए है नहीं। इसलिए सामान्य प्रज्ञा के द्वारा आपका ज्ञान संभव नहीं है, विशेष प्रज्ञा चाहिए, विशेष कोटि चाहिए। जो आगे बढ़ा हुआ है वही इस बात को, जो आगे बढ़ा हुआ है अभिप्राय है, जो ये प्रमाण मूलक सत्संग कर रहा उनको ये बात समझ में आती है, सामान्य व्यक्ति को नहीं। जैसे हमारे यहां जो सत्संग हो रहा है वो कैसा प्रमाण मूलक सत्संग है, यहां कोई परिकल्पित नहीं है, और सामान्य मनुष्य का ये अभ्यास है कि वो कोई लाभदायक या कोई फल को लालच देकर के बताया गया है, तो उसकी ओर जो है व्यक्ति ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो भी समझना चाहिए धर्म और ब्रह्म के विषय में, तो खास प्रमाण मूलक विचार करना चाहिए, जो अप्रामाणिक है उनका त्याग करना चाहिए। इसलिए कहा कि मेदया पिहितः लौकिक प्रज्ञा से ये ओंकार जो है वो ज्ञातव्य नहीं है, सामान्य व्यक्ति के द्वारा उनका ज्ञान संभव नहीं है। फिर आगे एक बात और कही गई ओंकार से कि मैं श्रुतम गोपाय, अंत में ने श्रुतम मैं गोपाय, ये जो अंतिम जो पंक्ति है उसको आप यदि क्रम में लगाएंगे शब्दों को तो ऐसा होगा मैं श्रुतम गोपाय, मैं यानी मम, श्रुतम यानी जो श्रवण पूर्वकम अधीतम, श्रवण पूर्वक मैंने ये जो उपनिषद का जो अध्ययन किया है वो गोपाय, गोपाय का अर्थ है विस्मृत्यादि निवारणेन पालय। ओंकार से प्रार्थना की गई कि मैंने जो अध्ययन किया है, श्रुतम यानी जो मैंने श्रवण किया है, आपने मेरे को अधिक श्रवण शक्ति दी, क्योंकि पहले ये मांगा गया ना कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, कर्ण के द्वारा कान के द्वारा मैं बहुत सुनूं, तो ओंकार की कृपा से हमने ये जो है उपनिषद का श्रवण किया, श्रवण यानी अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य पूर्वक, सभी वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में ही तात्पर्य है, यहां तक का श्रवण वो यदि हमने किया तो वो किया हुआ श्रवण वो विस्मृत न हो, उसका क्या स्मरण हमको बना रहे। तो अंत में ये ओंकार से कहा गया कि मेरे द्वारा ये जो अधित ये जो अध्ययन हुआ है, श्रवण पूर्वक जो अध्ययन हुआ है वो गोपाय यानी कभी उनका विस्मरण न हो, और विस्मृत्यादि निवारणेन पालय, आप इस तरह से मेरा पालन करें, वो आकर के ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ जैसे तुमको नहीं होगा वो नहीं देखेंगे, अभिप्राय है कि इस तरह से मेरा पालन हो, यानी मेरी मेधा शक्ति होगी तो मेरे को इस बात का स्मरण रहेगा, और स्मरण रहेगा ओंकार की उपासना करे और अंतिम श्वास तक ये जो है हमारा क्रम बना रहे, तो मृत्यु के समय भी आप मेरे को स्मरण रहे, क्योंकि मृत्यु के समय यदि विस्मरण हो गया तो कठिन हो जाएगा। और स्मरण उसी बात का रहता है जिसका अभ्यास किया हुआ है। इसलिए यहां इतना ही नहीं समझे कि केवल स्मरण रहे, स्मरण रखने के लिए अभ्यास भी चालू रहे। और ये बिल्कुल बात निश्चित है कि जिस विषय का हम अभ्यास करते हैं ना, तो वो जो है वो स्मृति भी मृत्यु के समय उसी की रहती है। संकट आने पर पता चल जाता कि हमारा अभ्यास किस विषयक है। उस समय भगवान याद आए तो समझना कि उनका स्मरण यही है, और नहीं तो कोई पति पत्नी सगा संबंधी याद आ जाते हैं, वो कोई रक्षा करने वाले। भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ यदि शरीर छोड़ता है तो वो मेरे को प्राप्त होगा। क्यों ऐसा है तो भगवान कहते हैं वो सदा तद्भाव भावित, स्मरण मृत्यु के समय उसका रहेगा जिसका अभ्यास हुआ है। भगवान कहते यदि मेरा स्मरण करता है तो वो मेरे भाव से वो सदा भावित था, जीवित अवस्था दरमियान भी वो मेरा ही स्मरण करता था, इसलिए मृत्यु के समय वो मेरा स्मरण उनको होगा। सदा तद्भाव भावित, अभ्यास उन्होंने उन्हीं का किया हुआ। यदि संसार का अभ्यास है, धन का अभ्यास है, तो मृत्यु के समय धन याद आएगा। देखिए जो धन के लोभी है उसका यही हाल होता है। एक व्यक्ति ऐसा था जो दुकान चला रहा था, बढ़िया दुकान चल रही थी। अब हुआ ये कि वो वृद्ध हो गया, उनके बच्चे भी योग्य हो गए, दुकान चलाने योग्य हो गए, तो वो खुद जो है कभी कभी जाया करता था। और चार बच्चे थे, वो चारों बच्चों जो है वो दुकान को बढ़िया से चला रहे थे। अब वो जो सेठ है उनकी जब मृत्यु की घड़ी उपस्थित हुई तो मुमूर्षु होकर के वो मृत्युशैया पर वो सो रहा है। अब लड़कों को लगा कि अब ये रहेंगे नहीं, अंतिम श्वास गिन रहे। तो उस समय जो लड़का वहां पर उपस्थित था, उन्होंने अपने और जो तीनों भाई थे उनको भी बुला लिया कि मृत्यु के समय चारों बच्चे उनके सामने उपस्थित रहे तो अच्छा। तो वो भी आ गए, तुरंत फटाफट दुकान बंद करके आ गए और चारों वहीं पे आकर के इर्द गिर्द खड़े हो गए। अब वो जो मुमूर्षु वृद्ध जो है पूछ रहे नाम लेकर के, अमुक नाम वाला लड़का कहां है, तो वो बोला कि मैं पिताजी यही हूं आपके सामने, और दो का नाम लिया। तो दोनों ने कहा कि पिताजी मैं भी आपके सामने उपस्थित हूं, और चौथे लड़के का नाम लिया। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि पिताजी मैं यही उपस्थित हूं, ऐसा सुनते ही वो बोले कि तो दुकान पर कौन है, कहते और श्वास छूट गए। अब वो कहां जाएंगे बताइए, उनका जन्म कहां होगा, दुकान में, क्योंकि अभ्यास उन्हीं का था। इसलिए परमात्मा का, इसलिए जो है हमको अभ्यास यही करना चाहिए कि हमारा मन परमात्मा में रहे तो मृत्यु के समय भी ये होगा। तो इस तरह से मृत्यु के समय भी विस्मरण न हो, इस तरह से ये बहुत ही दिव्य प्रार्थना है, उसका अवश्य पाठ करते रहना चाहिए। पाठ करने से अवश्य हमको इस प्रकार का जो है वो जैसे बताया गया लाभ वो मिल सकता है। ओम तत्सत।